आज है मार्च महीने की 27 तारीख दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। अल्जीरिया में राष्ट्रपति अब्दुल अजीज की मुश्किलें बढ़ी। सेना प्रमुख ने कहा राष्ट्रपति को अयोग्य घोषित किया जाए। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 16 साल तक भूख हड़ताल करने वाली इरोम शर्मिला आज कहाँ है।
मणिपुर के लोगों के लिए मैं संघर्ष का प्रतीक थी, पर अनशन तोड़ने और
अभिनेत्री जयाप्रदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। रामपुर में समाजवादी पार्टी के आजम खान से होगा मुकाबला।
पूरा पोलराइज करने का प्रयास होगा तो नेचुरली उधर मुस्लिम पोलराइज होंगे, इधर इस तरीके का डिवाइड होकर ही होगा ये इलेक्शन।
और आईपीएल में दिल्ली के कोटला मैदान में ब्रावो की गेंदबाजी और वॉटसन की बल्लेबाजी ने बांधा समा। सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। अल्जीरिया के सेना प्रमुख का कहना है कि देश के राष्ट्रपति अब्देल अजीज को खुद को सत्ता के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए और राष्ट्रपति कार्यालय छोड़कर चले जाना चाहिए। खराब स्वास्थ्य की वजह से अब्देल अजीज को एक लंबे समय से बमुश्किल ही किसी सार्वजनिक स्थान पर देखा गया है। अल्जीरिया की आम जनता भी इसी की मांग को लेकर के एक लंबे समय से प्रदर्शन कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने एक केंद्रीय जांचकर्ताओं के दल को माली भेजा है। ये दल माली में एक सप्ताह के भीतर 150 लोगों की हत्या की जांच के लिए भेजा गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि माली के ओगो सागो गांव में कथित आत्मरक्षा के नाम पर हुआ नरसंहार सांप्रदायिक हिंसा के खतरे को बयान करता है। जिनेवा में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनिसेफ के प्रवक्ता क्रिस्टोफ ने कहा कि मारे गए और घायलों में सबसे अधिक बच्चे हैं। उन्होंने कहा
UNICEF is deeply saddened and outraged that children are among the victims.
UNICEF इस घटना को लेकर बहुत दुखी है। मारे गए लोगों में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। स्थानीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मारे गए लोगों में एक तिहाई बच्चे ही हैं। 31 बच्चे बुरी तरह घायल हैं। बहुत से बच्चों को गोली लगी है, बहुत से बुरी तरह जल गए हैं और कुछ की हड्डियाँ टूट गई हैं। ये थे यूनिसेफ के प्रवक्ता के शब्द। ज्यादातर हिस्सों में ब्लैकआउट के बाद वेनेजुएला में बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है। बिजली कटौती की वजह से सरकार पहले ही विद्यार्थियों और कारीगरों को घर पर रहने की सलाह दे चुकी है। सूचना मंत्री जॉर्ज रॉड्रिज का दावा है कि ये सब अमेरिका के शह पर विपक्ष द्वारा किया गया था, जिन्होंने देश के सबसे प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध के मुख्य ट्रांसफार्मर में आग लगा दी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता जॉन गाइडो का आरोप है कि ये सब कुछ भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान में बाढ़ की वजह से स्थिति और खराब होती जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ की वजह से अब तक करीब 21 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें शिराज शहर में हुई हैं। इसके अलावा बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। एक राष्ट्रीय चैनल को दिए अपने साक्षात्कार में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि मैं अपने देशवासियों के जज्बे को सलाम करता हूं, जो इस मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे की मदद के लिए आगे खड़े हैं। उन्होंने कहा
खुद मर्दों बेसियार पुर तलाश बुदन हमें जो यानी
लोग बेहद सक्रिय हैं और मदद के कामों में लगे हुए हैं। वे आगे आकर पीड़ितों को मदद कर रहे हैं। सरकारी सेवाओं से पहले स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंच रहे हैं। ये बेशकीमती है और इससे उनकी देशभक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। आर्थिक क्षति तो हुई है, लेकिन अभी लोगों की सुरक्षा सबसे अहम है। ये थे हसन रूहानी के शब्द। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कार्यक्रम का संचालन करने वाले अधिकारियों का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका में आए चक्रवाती तूफान ने पूरे साल भर के लिए जरूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। इस तूफान ने मोजाम्बिक, मालावी और जिम्बाब्वे को सबसे अधिक प्रभावित किया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बायसेले ने कहा कि किसानों की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई है और लोगों को इस भयावह स्थिति से बाहर निकलने के लिए बड़ी मात्रा में और तत्काल मदद की जरूरत है। तूफान की चपेट में आकर 10,000 घर उजड़ गए हैं और 80 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तूफान के बाद अब इलाके में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। उड़ान भरने से ठीक बाद ही बोइंग 737 मैक्स विमान के इंजन में समस्या आने से उसे फ्लोरिडा में आपातकालीन स्थिति में लैंड कराना पड़ा। हालांकि विमान में कोई भी यात्री नहीं था, जिसकी वजह से किसी भी लोगों की क्षति नहीं हुई है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। अफ्रीका में एक देश है अल्जीरिया, जहां लोग अपने मौजूदा राष्ट्रपति को सत्ता से फौरन हटा देना चाहते हैं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज 6 साल पहले स्ट्रोक की वजह से आज ऐसी हालत में पहुंच गए हैं कि वो बड़ी मुश्किल से चल फिर और बोल पाते हैं, लेकिन सत्ता की चाहत उन्हें कुर्सी छोड़ने नहीं देती। उनके खिलाफ कई हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब अल्जीरिया के आर्मी चीफ ने कहा है कि राष्ट्रपति को शासन करने के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए भूमिका राय से।
टेलीविजन पर अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद जी सालेह ने कहा कि इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता फौरन तलाशना चाहिए जो संविधान के दायरे में भी हो। उन्होंने कहा कि स्थानीय राजनीतिक हालात की एकमात्र गारंटी संविधान है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 102 का हवाला भी दिया है। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति शासन करने में सक्षम नहीं है तो संवैधानिक परिषद ये घोषित कर सकती है कि राष्ट्रपति का पद खाली है। संविधान के मुताबिक यदि ऐसा हुआ तो सीनेट के प्रमुख को तब तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते। अल्जीरिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के दखल से इस घटनाक्रम में नाटकीय मोड़ आ गया है। बीबीसी के नॉर्थ अफ्रीका संवाददाता राणा जावेद का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद जी साले को राष्ट्रपति अब्देल अजीज का वफादार माना जाता है, इसलिए उनके इरादों पर भी सवाल उठेंगे। अल्जीरिया के अधिकतर लोगों के लिए ये बात समझ से परे है कि उनका 82 वर्षीय राष्ट्रपति, जिसे 6 साल पहले स्ट्रोक आया था, जो बड़ी मुश्किल से चल फिर और बोल पाता है, कैसे एक देश को चला सकता है। राष्ट्रपति अब्देल अजीज अल्जीरिया में आजादी की लड़ाई के पुराने योद्धा हैं। उच्च वर्ग से संबंध रखने वाले राष्ट्रपति पाश्चात्य रंग ढंग में ढले हुए हैं। 8 साल पहले अरब जगत में हुई क्रांति के दौरान राष्ट्रपति अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब हुए थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राष्ट्रपति अब्देल अजीज अपने 20 साल के शासन को और बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रपति इस बात पर पहले ही राजी हो चुके हैं कि वे आगामी चुनाव में अपने 5वें कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। साल 2013 में स्ट्रोक से पीड़ित होने के बाद राष्ट्रपति अब्देल अजीज बमुश्किल कहीं सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं। उनकी योजना एक और चुनाव लड़ने की थी। इसके विरोध में पिछले महीने प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ था जो अभी तक थमा नहीं है। राष्ट्रपति अब्देल अजीज ने भले ही कह दिया हो कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी अब सत्ता में फौरन बदलाव चाहते हैं।
अल्जीरिया में राष्ट्रपति अब्देल अजीज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब सेना प्रमुख ने कह दिया है कि उन्हें पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। बीबीसी हिंदी के रिपोर्ट सुन रहे थे आप भूमिका राय से।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
भारत में इस बार लोकसभा चुनावों में जिन जगहों पर मुकाबला रोचक होगा उनमें एक सीट उत्तर प्रदेश के रामपुर की भी होगी, जहां इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान के सामने जयाप्रदा होंगी, जो अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर रामपुर में अपनी सियासी किस्मत आजमा रही हैं। रामपुर से ही समाजवादी पार्टी की सांसद रहीं जयाप्रदा इस बार समाजवादी पार्टी और आजम खान को कितनी चुनौती दे पाएंगी, विश्लेषण के लिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान से बात की।
जयाप्रदा जो हैं, ये सबको मालूम है कि जब वो रही भी वहां तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया तो है नहीं। वो अपने फिल्म के बैकग्राउंड पे जीतती रही हैं, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि उनका कोई इस तरीके का फिल्म वाला भी अट्रैक्शन है जिसकी वजह से लोग उन्हें ज्यादा पसंद करेंगे। और ये जरूर है कि क्योंकि वो बीजेपी के कैंडिडेट तो वो पूरा पोलराइज करने का प्रयास होगा, तो नेचुरली उधर मुस्लिम पोलराइज होंगे, इधर इस तरीके का डिवाइड होकर के ही होगा ये इलेक्शन। और मुझे लगता नहीं है कि जयाप्रदा के लिए कोई विक्ट्री आसान होगी। मोदी के नाम का जितना सपोर्ट मिल सकता है, जितना बेनिफिट मिल सकता है, वो जरूर पूरा प्रयास करेंगी, लेकिन उससे विक्ट्री मिलती कि नहीं बड़ा मुश्किल है कहना भी। आजम खान का अच्छा होल्ड है उस इलाके में, और जयप्रदा कैंडिडेट बहुत वीक है, एक्सेप्ट कि उनको बीजेपी का टिकट मिल गया।
लेकिन जयप्रदा चूंकि समाजवादी पार्टी से दो बार वो वहीं से चुनाव लड़ चुकी हैं और उन्हें आजम खान का सपोर्ट था उस वक्त, तो ऐसे में अब उनका बीजेपी ज्वाइन करना लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया है?
नहीं, लोगों तो बिल्कुल उनको इस मामले में, देखिए जो अमर सिंह के साथ होगा उसका लोगों को अंदाजा है कि कभी भी पैतरा बदल सकता है, क्योंकि अमर सिंह का भी कोई आइडियोलॉजिकल संबंध किसी से नहीं होता है, और जयप्रदा तो बिल्कुल उनकी बहुत खास है और जो भी उन्हीं के कहने पे चलती है, वरना उनको कोई पॉलिटिक्स का तो कोई आइडिया नहीं, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं।
और अगर हम रामपुर के मुस्लिम वोटरों की बात करें तो कितनी बड़ी तादाद है इस बार जो डिसाइसिव वोटिंग जिनकी होगी?
करीब 40% वोट जो है मुस्लिम्स का है रामपुर में, तो बहुत बड़ा और मतलब रेयर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ इतनी ज्यादा तादाद में मुस्लिम्स हैं, तो वहाँ पे तो उनके तो नेचुरली इनसे बहुत नाराजगी होगी, मैं इस वजह से कि वो बीजेपी की टिकट पे लड़ रही और कोई उनकी पर्सनल, जैसे मैंने कहा, कोई पर्सनल स्टैंडिंग है नहीं, जो कुछ थी वो समाजवादी पार्टी की वजह से, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से उनको बहुत बड़ा पूरा मुस्लिम सपोर्ट था वहाँ। हालांकि तब वो कांग्रेस भी रहती थी, मुस्लिम वोट कांग्रेस में भी डिवाइड होता था, बट मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई वहाँ से कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा करने के चांसेस नहीं है कांग्रेस के।
और अगर पीलीभीत और सुल्तानपुर की बात करें तो इस बार सीटों की अदला बदली हो गई लगती है। पीलीभीत से 2014 में मेनका थी, अब वरुण हैं, और सुल्तानपुर से 2014 में वरुण गांधी थे, अब मेनका गांधी हैं।
वो माँ बेटों ने आपस में शायद इसलिए एक्सचेंज किया है, पुत्र प्रेम तो सबसे बड़ा होता है, तो उनको ये लग रहा था कि शायद कमजोर पड़ जाएंगे वरुण वहाँ पे। हालांकि वरुण ने वहाँ उस इलाके में कई बड़े यूनिक काम करे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संजय सिंह क्योंकि वहाँ से खड़े हो रहे हैं कांग्रेस से, और संजय सिंह अमेठी के रॉयल फैमिली के वो है नुमाइंदे, तो इसलिए चांसेस इनको लग रहा होगा कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि इधर काफी दिन से वरुण गांधी आ नहीं रहे थे कंस्टिट्यूएंसी में, कुछ बीजेपी से मनमुटाव हो गया या लोगों से तो जाना बंद कर दिया उन्होंने, तो इस वजह से इन लोगों को लग रहा था कि वहां पे नाराजगी है वरुण से, तो मेनका गांधी जो रिस्क है वो रिस्क फैक्टर अपने लिए रख लेना चाहती है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। कार्यक्रम में आगे समाचार पत्रों की सुर्खियां देखेंगे क्या कुछ छपा है आज। उससे पहले एक और खबर जो कुछ दिन पहले आई थी, व्हाट्सएप पर राजनीतिक राय जाहिर करने की वजह से कई शिक्षकों और अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है, ये खबर है। और व्हाट्सएप पर इन कथित आपत्तिजनक संदेशों की वजह से कुछ लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। इससे ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति या व्हाट्सएप में क्लोज्ड ग्रुप में भी राजनीतिक राय जाहिर नहीं कर सकता, और यदि ऐसा करना क्या कानून का उल्लंघन है या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। समझने के लिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता से बात की।
ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है, और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ने खुद भी माना है कि ये हमारा ग्रुप प्राइवेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, तो अगर प्राइवेट ग्रुप में अगर लोग आपस में बात कर रहे हैं, इवन अनुमति के बाद सरकारी अधिकारी अपने विषयों पर लिख भी सकते हैं और तमाम लोग राजनीतिक विषयों पर भी लिखते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि अनुशासनहीनता के तहत आता है, इसके खिलाफ सर्विस रूल के तहत कार्रवाई की जा सकती है या सस्पेंशन किया जा सकता है या FIR लॉन्च की जा सकती है। पर व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म अभी तक कोई ऐसा सार्वजनिक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर अभिव्यक्ति को किसी कानून के दायरे में बांधा जा सके।
तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकार का हनन हो रहा है तो क्या कानूनी प्रावधान है?
पहले नंबर पर सरकारी अधिकारी के लिए ये है कि अगर किसी ने भी कोई गलत काम किया है, ऐसा लगता है जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, तो पहले नंबर पर उससे एक शो कॉज नोटिस इशू करनी चाहिए और जवाब के बाद जांच होनी चाहिए, और उसके बाद ही कोई सस्पेंशन एक ऐसा जो हथियार है जिसका इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जबकि बहुत ही संगीन स्थिति बन गई हो। और अगर इस तरह के छोटे मामलों में सस्पेंशन किया जाएगा तो उससे लोगों का हैरेसमेंट होता है, और उसमें लोगों के पास उपाय हैं क्योंकि सस्पेंशन एक अल्पकालिक तौर पर होता है और सस्पेंशन के खिलाफ लोग कोर्ट भी जा सकते हैं।
यहाँ तो जो मामला है वो ये है कि राजनीतिक ओपिनियन जो दिया गया है वो सरकार के खिलाफ था, लेकिन मान लीजिए वो सरकार की तारीफ करता है तो क्या इस तरह का कभी कदम उठाया जाता?
नहीं, अब यही पूरा एक फर्क आ जाता है कि आज जिसकी सरकार है राजनीतिक पार्टी की, कल के दिन अगर विरोधी पार्टी की आ जाए और जब राजनीतिक विरोधाभास है तो जो आज जो अनुकूल दिख रहा है वो कल प्रतिकूल हो जाएगा, इसलिए राजनीतिक दल और सरकार का जो फर्क खत्म हो गया है, इस फर्क को खत्म नहीं होना चाहिए, और यहीं पर ही बीच में कानून की एक बड़ी ही बारीक रेखा है कि दल अलग है और सरकार अलग है। सरकार के भीतर जो कानूनी सिस्टम है, उस कानूनी सिस्टम के दायरे में रहकर अगर कोई अपने ओपिनियंस दे रहा है, उन ओपिनियंस से राजनीतिक दल सहमत या असहमत हो सकते हैं, पर सरकारी अनुशासन या सरकारी प्रक्रिया में अगर बाधक नहीं है, जब तक कि वो मामले देशद्रोह के नहीं हो या असामाजिक तत्वों को, हम असामाजिक हरकतों को नहीं बढ़ावा दे रहे हो, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि दल का खिलाफ होना सरकार के खिलाफ होना नहीं होता है।
अगर सरकार की आलोचना पर किसी को अगर सजा होती है तो क्या इससे ये संकेत नहीं जाता कि आपको सरकार की आलोचना ही नहीं करनी? बिकॉज डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो आलोचना होना एक स्वस्थ डेमोक्रेसी की निशानी मानी जाती है।
देखिए, देश में इस बात की बात होती है कि लोग कंपलसरी मताधिकार का इस्तेमाल करें, और सरकारी कर्मचारियों के लिए तो कई बार जो लोग चुनाव ड्यूटी में होते हैं उनके लिए विशेष बंदोबस्त किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारी भी, सरकारी अधिकारी भी वोट दे रहे हैं, किसी न किसी राजनीतिक दल को वोट दे रहे होंगे, और उस राजनीतिक दल को वोट देने से पहले उन्होंने अपना मन बनाया होगा, उन्होंने उन चीजों के बारे में चर्चा की होगी। तो चर्चा तो लोकतंत्र की ऑक्सीजन है, आप उससे लोगों को कैसे रोक सकते हैं? तो विमर्श के अधिकार को तो वो अनुच्छेद 19 के तहत, संविधान के तहत वो उसको मान्यता प्राप्त है, मूल अधिकार है। तो कोई भी जो प्रशासनिक प्रक्रिया से उस फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं किया जा सकता है। इसलिए दल और सरकार, दल और देश, ये दोनों बहुत ही अलग मुद्दे हैं, इन दोनों को जोड़ने से ही पूरी तकलीफ हो रही है।
ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता। आइए एक नजर दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों पर, भूमिका राय स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी संदीप, चुनावी खबरों का माहौल चल रहा है, तो सबसे पहले बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा 28 मार्च को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कयास बहुत पहले से लगा जाती है, ये खबर दैनिक हिंदुस्तान ने प्रकाशित की है। दैनिक हिंदुस्तान की एक और खबर है कि अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में जो मूलवादी निर्मोही अखाड़ा है, उसने बोला है कि मध्यस्थता समिति में दो और न्यायाधीशों को शामिल किया जाए। टेलीग्राफ अखबार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक को लेकर के नौकरशाहों का एक रिटायर्ड ग्रुप है जिसने कहा है कि चुनाव आयोग से बोला है कि इस पर आप कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करें और इसे तब तक ना रिलीज करें जब तक कि चुनाव ना हो जाते हैं, इनफैक्ट सोशल मीडिया पर भी इसे रिलीज होने से रोकें। और इसी अखबार की एक खबर है जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के बारे में खबर दी गई है कि वो श्रीनगर में उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, वो 4 सप्ताह की सिक लीव पर थे। इंडियन एक्सप्रेस ने चीन से जुड़ी एक अहम खबर को अपने पन्ने पर प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि चीन ने जो वर्ल्ड मैप था उसके 30,000 ऐसे मानचित्र नष्ट किए हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो राहुल गांधी की जो न्याय योजना है, जो उन्होंने न्यूनतम आय योजना की है, उसे उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन इस पर अमित शाह ने चुटकी ली है कि आतंकियों को कड़ा सबक हम सिखाएं और विकास से भी बड़ा मुद्दा इसको बताया। तो चुनावी माहौल है तो पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये थी अखबारों की आज सुर्खियां।
बहुत शुक्रिया भूमिका राय। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 16 साल तक सेना को विशेष अधिकार देने वाले कानून आफ्सपा के खिलाफ भूख हड़ताल पर रहने वाली इरोम शर्मिला ने 3 साल पहले अपना अनशन तोड़ने के बाद मणिपुर विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था, लेकिन उस समय चुनाव में करारी हार के बाद वो खबरों की दुनिया से मानो गायब सी हो गई। उनकी तलाश करने निकली बीबीसी संवाददाता दिव्या आर, उन्होंने पाया कि इरोम शर्मिला ने मणिपुर ही छोड़ दिया है और अब वो बेंगलोर में रह रही हैं। क्या कर रही हैं, सुनिए दिव्या आर्य की रिपोर्ट।
चमचमाती शीशे की गगनचुंबी इमारतें छोड़कर मैं बैंगलोर शहर से बाहर निकल आई हूँ। यहाँ बहुत हरियाली है, रिहाइश के लिए कई फ्लैट्स बने हैं। इन्हीं में से एक में मणिपुर से हज़ारों किलोमीटर दूर अब अपने पति के साथ इरोम शर्मिला रहती हैं। इरोम से मेरी पहली मुलाकात पिछले आम चुनाव के वक्त अप्रैल 2014 में मणिपुर के अस्पताल के उस कमरे में हुई थी जहां वो कैद थी। 15 फुट/10 फुट के उस कमरे में उन्होंने अपनी जवानी के कई साल बिता दिए थे। तब उन्होंने मुझसे अकेलेपन और मोहब्बत की चाह का जिक्र किया था, चुनाव में वोट डालने की ख्वाहिश और लोकतंत्र में भरोसे की बात की थी। अब फिर एक आम चुनाव होना है और अनशन तोड़ने के बाद इरोम अब आज़ाद हैं, भारतीय मूल के अपने ब्रितानी बॉयफ्रेंड से शादी कर चुकी हैं और गर्भवती हैं।
Possibly earlier, maybe premature. So. Okay. The twins.
That is, God bless. That's so rare.
इरोम धीरे धीरे बोलती हैं, अपना समय लेकर। कभी कभी मुस्कुराती हैं, पर ज्यादातर वक्त भौहें तनी रहती हैं, मानो अंदर ही अंदर लगातार कुछ कचोट रहा हो। 28 साल की उम्र में इरोम शर्मिला सेना को विशेष अधिकार देने वाले कानून आफ्सपा के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गईं। उनकी मांग थी कि मणिपुर में लागू ये कानून हटाया जाए, क्योंकि उसकी आड़ में कई मासूम लोगों की जान ली जा रही है। साल 2000 में शुरू हुए इस अनशन को आत्महत्या की कोशिश मानकर इरोम को इम्फाल के एक अस्पताल में न्यायिक हिरासत में रख दिया गया। 16 साल के बाद एक दिन उन्होंने वो अनशन तोड़ने का फैसला कर लिया। तो अब क्या उन्होंने अपना वो संघर्ष छोड़ दिया है? कुछ घंटों चली मुलाकात में कई परतें खुली। इरोम ने कहा,
मेरे अधूरे संघर्ष और उस पर लोगों की प्रतिक्रिया की वजह से अब मैं कश्मीर के लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि मैं वहाँ क्या कर सकती हूँ।
इरोम ने बताया कि पिछले साल वो डेजमंड के साथ कश्मीर के कई इलाकों में गईं। कश्मीर में भी दशकों से आफ्सपा लागू है। इरोम के मुताबिक इसकी वजह से वहाँ भी व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं। वो कुनान और पुशपुरा गांव गए, जहां भारतीय फौज की एक टुकड़ी पर 1991 में औरतों के सामूहिक बलात्कार का आरोप है। सेना इस आरोप से इनकार करती है। डेसमंड ने बताया कि वहां की औरतें भी बहुत बात नहीं करती।
उन्हें लगता है कि बाहर के लोग उन्हें देखने तो आते हैं, पर कुछ करते नहीं। तो इरोम ने उनकी चुप्पी सुनने की कोशिश की, ये समझने के लिए कि वो वहाँ क्या कर सकती हैं।
वो नियंत्रण रेखा के पास के दर्दपुरा गांव भी गए, जहां ज्यादातर औरतें विधवा हैं और जो युवाओं के लिए पाकिस्तान जाकर हथियारों में प्रशिक्षण लेने का रास्ता माना जाता था। वहां औरतों की जिंदगी बहुत बदहाल दिखी, मूलभूत जरूरतों के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर और समाज में हाशिए पर। इरोम ये सब देख कर बहुत प्रभावित हुई।
जब मैं इन औरतों से मिली, खुद को असहाय पाया। वो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। अब मैं बस समुदाय के बीच रहकर काम करना चाहती हूँ।
कश्मीर में काम करना आसान नहीं है। डेसमंड ने बताया कि वहाँ एक अनाथालय ने उन्हें रहने का न्योता तो दिया है, पर इरोम की तरफ आम लोगों का नजरिया नर्म नहीं है। इरोम जब कश्मीर के पुलवामा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गईं, तो एक छात्रा ने पूछा, आप अपनी खराब छवि को कैसे बचाएंगी? ऐसे तल्ख सवाल पूछने वाली वो इकलौती लड़की नहीं थी। इरोम ने कहा,
इन छात्रों के लिए, मणिपुर के लोगों के लिए मैं संघर्ष का प्रतीक थी, पर अनशन तोड़ने और फिर चुनाव हारने के बाद उन्हें लगा कि मैं नाकामयाब हो गई। 16 साल बाद भी मैं उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकी और अब उसकी उम्मीद भी खत्म कर दी।
ये सब जानते हुए भी कश्मीर में रहकर काम करने की चाहत इरोम का आशावादी और साहसी होना है या अपरिपक्व समझ का सूचक? इरोम के अनशन खत्म करने के फैसले से मणिपुर के आम लोग और उनके समर्थक दोनों ही नाराज थे। नतीजा ये कि मणिपुर विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के ओक्रम इबोबी सिंह के करीब 19,000 वोटों के सामने सिर्फ 90 वोट मिले। अब इरोम को लगता है कि राजनीति में पैसा, भ्रष्टाचार और दमखम के बल पर ही काम होता है। पर ये समझ चुनाव लड़ने से पहले नहीं थी क्या? और अगर थी तो चुनाव लड़ने राजनीति में आने का फैसला ही क्यों किया?
अब मुझे लगता है कि ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। मैं अकेले बदलाव नहीं ला सकती। हम सबको साथ होकर इस बोझ को संभालना होगा।
इरोम और डेसमंड कश्मीर में क्या करेंगे, ये बहुत साफ तो नहीं हुआ। उनका गुजर बसर कैसे चलेगा, ये भी नहीं। बस लोगों के बीच रहकर उनकी जिंदगी बांटने की प्रबल इच्छा जाहिर थी। 47 साल की हो गई इरोम के लिए ये उनके अधूरे संघर्ष को पूरा करने का रास्ता हो सकता है, पर क्या ये कामयाब होगा? दिव्या आर्य, BBC, बैंगलोर।
खेल समाचार सुनाएंगे आपको, उससे पहले एक नजर bbchindi.com पर पहले पन्ने पर, एक आईपीएल से जुड़ी हुई खबर, जहां पर जयपुर में मैच के दौरान चौकीदार चोर है ये नारे लगे। ये खबर कितनी सच है कितनी झूठ, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच दो दिन पहले आईपीएल का मैच खेला जा रहा था, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि मैच के दौरान स्टेडियम में चौकीदार चोर है, इस तरह के नारे लगे। 2019 के आईपीएल टूर्नामेंट का ये चौथा मैच था। इस मैच का 24 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज निकोलस पूरन क्रीज पर दिखाई देते हैं और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज जयदेव उनादकट रनअप के लिए लौट रहे हैं। इस दौरान वीडियो में चौकीदार चोर है के नारे लगने की आवाज़ सुनाई देती है और ये नारा कम से कम 5 बार सुनाई देता है। लेकिन क्या ये वीडियो सही है या गलत है? बीबीसी चेक टीम जो फैक्ट चेक करती है ये खबर आप बीबीसी हिंदी के पहले पन्ने पर आकर विस्तार से पढ़ सकते हैं। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आईपीएल 12 में कल भी एक मुकाबला खेला गया, जहां मेजबान दिल्ली कैपिटल्स को अपने ही घर फिरोजशाह कोटला में पिछली चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई के सामने जीत के लिए 148 रनों का लक्ष्य था, जो उसने शेन वाटसन के तेज तर्रार 44 रनों की मदद से दो गेंद शेष रहते यानी 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शेन वाटसन ने ये 44 रन केवल 26 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से बनाए। उनके अलावा सुरेश रैना ने भी 30 रन बनाकर अपनी चमक दिखाई। केदार जाधव के बल्ले से भी 27 रन निकले और बचा खुचा काम खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नाबाद 32 रन बनाकर पूरा किया। दिल्ली के स्पिनर अमित मिश्रा ने 35 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन चेन्नई की कसी हुई गेंदबाजी के सामने उसके बल्लेबाज निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 147 रन बना सके। दिल्ली के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 51 और पृथ्वी शॉ ने 24 रन बनाए। शिखर धवन ने 51 गेंदों के लिए 47 गेंदों का सहारा लिया और 7 चौके जमाए। दिल्ली के ऋषभ पंत ने भी 13 गेंदों पर 25 रन तो जरूर बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही चेन्नई ने मैच पर पकड़ बना ली। चेन्नई के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट झटके तो रविंद्र जडेजा ने भी बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में केवल 23 रन देते हुए 1 विकेट हासिल किया। ये चेन्नई की लगातार दूसरी जीत है। आज भी आईपीएल में केवल एक मैच खेला जाएगा, जहां ईडन गार्डन्स में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना किंग्स इलेवन पंजाब से होगा। उधर सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में कल भारत ने मेजबान मलेशिया को 4-2 से हरा दिया। भारत के लिए सुमित कुमार, वरुण कुमार और मनदीप सिंह ने 1-1 गोल किया। आज भारत का सामना कनाडा से होगा।
वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। समापन से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। अल्जीरिया के सेना प्रमुख का कहना है कि देश के राष्ट्रपति अब्देल अजीज को खुद को सत्ता के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए और राष्ट्रपति कार्यालय छोड़कर चले जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने एक केंद्रीय जांचकर्ताओं के दल को माली भेजा है। ये दल माली में एक सप्ताह के भीतर 150 लोगों की हत्या की जाँच के लिए भेजा गया है। ज्यादातर हिस्सों में ब्लैकआउट के बाद वेनेजुएला में बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है। बिजली कटौती की वजह से सरकार पहले ही विद्यार्थियों और कारीगरों को घर पर रहने की सलाह दे चुकी है। सरकार का कहना है कि ये सब कुछ अमेरिका की शह पर हो रहा है। ईरान में बाढ़ की वजह से स्थिति और ख़राब होती जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ की वजह से अब तक करीब 21 लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कार्यक्रम का संचालन करने वाले अधिकारियों का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका में आए चक्रवाती तूफान ने पूरे साल भर के लिए ज़रूरी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इस तूफान से 80 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। उड़ान भरने के ठीक बाद ही बोइंग 737 मैक्स विमान के इंजन में समस्या आ जाने के बाद उसे फ्लोरिडा में आपातकालीन स्थिति में लैंड कराना पड़ा। हालांकि विमान में कोई भी यात्री नहीं था। हाल में बोइंग विमानों में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से इन्हें वाणिज्यिक सेवा के लिए इस्तेमाल में लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।